ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक पर अंकुश लगाने के लिए आज विधानसभा में पेश होगा विधेयक। 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का है प्रावधान। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, वीरपुर और छपरा समेत राज्य के 10 शहरों को उड़ान योजना से जोड़ा जाएगा। 20 सीट तक की क्षमता वाले विमान सेवा की होगी शुरुआत। और रिहन तथा वाणसागर जलाशय से बिहार को पानी की आपूर्ति शुरू। प्रतिदिन 9000 क्यूसेक पानी मिलने से दक्षिण बिहार के किसानों को मिल रहा है लाभ। विस्तार से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज 11 बजे लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। यह नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। इससे पहले कल दोनों सदनों में वित्तीय वर्ष 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया, जिसमें देश के आर्थिक प्रदर्शन की समीक्षा की गई है। एक रिपोर्ट।
वर्ष 2019 में कार्यभार संभालने के बाद से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यह लगातार 7वीं बजट प्रस्तुति होगी। अपने बजट पूर्व परामर्श के दौरान वित्त मंत्री ने कई हितधारकों के साथ बैठकें की, जिनमें किसान और मजदूर संघ, कृषि अर्थशास्त्री, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े विशेषज्ञ के अलावा रोजगार और कौशल, व्यापार तथा सेवाओं के साथ साथ बुनियादी ढांचा, ऊर्जा और शहरी क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधि शामिल थे। परामर्श के दौरान वित्त मंत्री ने विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि बजट तैयार करते समय उनके सुझावों पर विचार किया जाएगा। लोकसभा में बजट पेश होने के बाद बजट की कॉपी राज्यसभा में भी रखी जाएगी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
बिहार के 10 शहरों को केंद्र की महत्वाकांक्षी उड़ान योजना से जोड़ा जाएगा। इनमें वीरपुर, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकिनगर, मोतिहारी, रक्सौल, मधुबनी और छपरा को शामिल किया गया है। इन शहरों से 20 सीट तक क्षमता वाले विमान सेवा की शुरुआत होगी। राज्यसभा में भाजपा सांसद भीम सिंह के तारांकित प्रश्न के उत्तर में नागर विमानन मंत्री के आर नायडू ने ये जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बिहार सरकार से इन शहरों से विमानों का परिचालन शुरू करने के लिए हवाई अड्डे के विकास और भविष्य के विस्तार के लिए भूमि की उपलब्धता की मांग की गई है। साथ ही सुरक्षा, अग्निशमन सेवाओं, मौसम संबंधी सेवाओं और हवाई अड्डों के परिचालन और प्रबंधन के प्रावधान के लिए दायित्व के संबंध में अपनी सहमति और पुष्टि प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। केंद्र ने कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना की बहाली का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने ये जानकारी दी। वहीं एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री चौधरी ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का भी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में बेरोजगारी दर में हाल के वर्षों में गिरावट आई है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए अनुमानित बेरोजगारी दर 4.2% थी। 2022-23 में यह दर 3.2% रही। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत अब तक 13,94,000 से अधिक लाभार्थियों का पंजीकरण किया जा चुका है। इसमें लगभग 5.5 लाख महिलाएं हैं। लोकसभा में कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने बताया कि 5,03,000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसमें लगभग 3.25 लाख महिलाएं हैं। राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार नया कानून ला रही है। सरकार इस संबंध में आज विधानसभा में विधेयक पेश करेगी। विधेयक में पेपर लीक या इससे जुड़ी किसी भी गतिविधि में शामिल होने वालों को 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा। इस कानून के अधीन सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। विधानसभा में कल विधायकों के बीच बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 की प्रतियां बांटी गई। इधर आज ही उच्चतर शिक्षण संस्थानों में विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा नियुक्तियां किए जाने संबंधी संशोधन विधेयक सहित कई अन्य विधेयक भी पेश किए जाएंगे। विधानमंडल के मॉनसून सत्र के पहले दिन कल वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 47,512 करोड़ रुपए का पहला अनुपूरक बजट पेश किया गया। विधानसभा में वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने और प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी ने विधान परिषद में अनुपूरक बजट पेश किया। 26 जुलाई को इस पर वाद विवाद और सरकार के उत्तर के बाद इसे पारित किया जाएगा। विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह आज निर्विरोध रूप से सभापति निर्वाचित किए जाएंगे। श्री सिंह ने कल सभापति पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस पद के लिए किसी अन्य उम्मीदवार ने अपना नामांकन नहीं भरा है। विधानसभा के मॉनसून सत्र के संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने विभिन्न सदस्यों को अध्यासीन सदस्य मनोनीत किया है। इसमें भाजपा विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह, जदयू विधायक दामोदर रावत, कांग्रेस के विजय शंकर दुबे, राजद के भूदेव चौधरी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की ज्योति देवी शामिल हैं। वहीं विधान परिषद के लिए डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, प्रोफेसर नवल किशोर यादव, मदन मोहन झा और महेश्वर सिंह को अध्यासीन सदस्य मनोनीत किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज मिलने से विकास को नई रफ्तार मिलेगी। एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में श्री कुमार ने कहा कि यह बिहार की पुरानी मांग रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इसमें जो भी बिहार के लिए देगी उससे विकास में मदद मिलेगी। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र को लेकर भाजपा विधानमंडल दल की आज बैठक होगी। प्रदेश भाजपा कार्यालय में यह बैठक शाम 6 बजे आयोजित की गई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में पार्टी के सभी विधायक और विधान पार्षद मौजूद रहेंगे। बैठक में विधानमंडल के चालू सत्र में विपक्ष के हमले का जवाब देने और राज्य सरकार की उपलब्धियों को सदन में प्रभावी ढंग से रखने को लेकर रणनीति बनेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस साल की मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में भौतिकी के प्रश्न के 2 विकल्पों को सही उत्तर मानने के एनटीए के फैसले पर अपनी राय देने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल बनाने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने आईआईटी दिल्ली की विशेषज्ञ टीम को आज दोपहर 12 बजे तक सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को अपनी रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिकाओं के समूह में भौतिकी के एक विवादास्पद प्रश्न के लिए ग्रेस अंक देने पर सवाल उठाया गया था। इस मामले में आज दोबारा सुनवाई होगी। नीट पेपर लीक मामले में पटना स्थित विशेष अदालत ने 6 आरोपियों की सीबीआई रिमांड अवधि 5 अगस्त तक बढ़ा दी है। जांच एजेंसी ने इस संबंध में अदालत के समक्ष आवेदन दिया था। बिहार को रिहंद और वाण सागर जलाशय से पानी की आपूर्ति शुरू हो गई है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के रिहंद जलाशय से राज्य को प्रतिदिन औसतन 5,000 क्यूसेक पानी की आपूर्ति हो रही है। वहीं मध्य प्रदेश के वाण सागर जलाशय से 4,000 क्यूसेक पानी रोजाना मिल रहा है। इन दोनों जलाशय से पानी की आपूर्ति शुरू होने के बाद दक्षिण बिहार में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होने लगा है। पटना स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अनुवांशिकी और दुर्लभ रोग क्लिनिक शुरू हो गया है। एम्स के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर जी के पॉल ने बताया कि यहां जटिल विकारों से प्रभावित व्यक्तियों की जांच और इलाज की व्यवस्था के लिए विशेषज्ञों की टीम मौजूद रहेगी। उन्होंने बताया कि अस्पताल में नवजात शिशु जांच केंद्र की भी शुरूआत की गई है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण की पुनर्परीक्षा सम्पन्न हो गई है। चार दिनों तक चली इस परीक्षा के दौरान 57 फर्जी परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया गया। परीक्षा के अंतिम दिन कल पटना और बेगूसराय से एक एक फर्जी अभ्यर्थी की गिरफ्तारी हुई। गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र से पुलिस ने दो हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चार विदेशी पिस्तौल और 8 मैगजीन बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि इन दोनों हथियार तस्करों का संबंध कुख्यात लॉरेंस विश्नोई गिरोह से है। उन्होंने बताया कि इस गैंग के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए SIT का गठन किया गया है। कृषि विभाग ने पटना के बख्तियारपुर के तत्कालीन कृषि प्रखंड पदाधिकारी नसीम अंसारी को रिश्वतखोरी के आरोप में बर्खास्त कर दिया है। बर्खास्त अधिकारी को निगरानी जांच ब्यूरो ने 11,000 रूपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया था। पटना के मनेर प्रखंड के खासपुर पैक्स अध्यक्ष और प्रबंधक समेत 12 सदस्यों के खिलाफ 37,00,000 रूपये गबन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। अररिया पुलिस ने सुपौल के प्रतापगंज से मानव तस्करी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने केंद्र सरकार के उस स्पष्टीकरण को प्रमुखता से प्रकाशित किया है जिसमें कहा गया है कि मौजूदा प्रावधानों के तहत बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। हिंदुस्तान लिखता है जदयू सांसद के सवाल पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री बोले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। दैनिक भास्कर ने इसी खबर पर विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से अखबार लिखता है हमारी मांग राज्य हित में। दैनिक जागरण ने लिखा है मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट आज। प्रभात खबर लिखता है आर्थिक सर्वेक्षण में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आर्थिक वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान। आज और राष्ट्रीय सहारा समेत सभी समाचार पत्रों ने सावन माह की शुरुआत से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश करेंगे। राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक पर अंकुश लगाने के लिए आज विधानसभा में पेश होगा विधेयक। 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का है प्रावधान। भागलपुर मुजफ्फरपुर वीरपुर और छपरा समेत राज्य के 10 शहरों को उड़ान योजना से जोड़ा जाएगा। 20 सीट तक की क्षमता वाले विमान सेवा की होगी शुरुआत। और रिहन तथा वाणसागर जलाशय से बिहार को पानी की आपूर्ति शुरू। प्रतिदिन 9,000 क्यूसेक पानी मिलने से दक्षिण बिहार के किसानों को मिल रहा है लाभ। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।